सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। श्यामली की नींद जैसे टूटी तो सबसे पहले उसकी नज़र पास लेटे हुए विश्वनाथ पर पड़ी। उसका दिल थक से रह गया। वो कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई। विश्वनाथ की सांसें गहरी थीं, लेकिन चेहरे पर वही कठोरता, वही अक्खड़पन, जैसे नींद में भी उसकी आत्मा में बसा हो। उसकी आंखें बंद थीं, मगर माथे पर हल्की सलवटें साफ दिख रही थीं, जैसे कोई भारी बोझ उसे चैन से सोने भी नहीं देता। श्यामली मन ही मन बुदबुदाई, सोते हुए भी इतने रूखे, इतने सख्त, जैसे अभी आंख खोली और मुझे डांट दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। उसका सीना अनायास उठने गिरने लगा। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर तभी उसने महसूस किया उसकी साड़ी का पल्लू किसी भारी चीज तले दबा हुआ है। उसने पलटकर देखा तो पल्लू पर विश्वनाथ का हाथ रखा था। वो हाथ चौड़ा, मजबूत और भरा पूरा, नसें उभरी हुई, हथेली सख्त मगर गर्म। श्यामली का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पल्लू खींचने की कोशिश की, मगर हाथ की मजबूती ऐसी थी कि पल्लू जरा भी नहीं हिला। वो हल्का सा झुकी ताकि बिना शोर किए पल्लू निकाल सके, लेकिन जैसे ही झुकी उसका ब्लाउज का गला थोड़ा ढीला होकर आगे झूल गया। नीचे झुकने पर उसका सीना ढकने वाला पल्लू तो वैसे भी हाथ तले दबा था, और अब ब्लाउज के गले से उसकी नाजुकता हल्की झलकने लगी। श्यामली का चेहरा गर्म हो गया, उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर पल्लू निकालने की कोशिश की, मगर हाथ उतना ही भारी था। अब वो और झुकी और औरत की वो नर्म गरिमा और साफ दिखाई देने लगी। उसका दिल कह रहा था, हे भगवान, कहीं ये अभी उठ गए तो मैं तो डूब मरूंगी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसकी चिंता सच कर दी। विश्वनाथ की नींद अचानक टूटी। उसकी आंखें आधी खुली और उसने सबसे पहले देखा अपने ऊपर झुकी श्यामली। श्यामली का चेहरा बहुत करीब था। उसकी आंखों में डर, हड़बड़ाहट और मासूमियत का तूफान एक साथ तैर रहा था। विश्वनाथ की नज़र पहले उसके चेहरे पर ठहरी। सुबह की उस हल्की धूप में उसका चेहरा और भी निखरा हुआ लग रहा था। खुले बाल गालों से लटक कर उसके माथे पर गिर रहे थे। होंठ कांप रहे थे, जैसे कोई चोरी करते पकड़ी गई हो। विश्वनाथ ने अपनी पलकों को पूरी तरह खोला और कुछ पल तक उसे निहारता रहा। उसके मन में अनायास ख्याल आया, सुबह भी कितनी खूबसूरत लगती है ये लड़की, जैसे किसी मासूम फूल की पंखुड़ी। उसकी नज़र एक पल के लिए नीचे फिसली, मगर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया। उसकी आंखों में अनकहा सा आकर्षण चमका, लेकिन अगले ही पल वो कठोरता में बदल गया। श्यामली ने जैसे ही उसकी निगाहें अपनी ओर उठती देखी, उसका दिल धड़क धड़क कर सीने से बाहर आने को हुआ। वो हड़बड़ाकर और सीधी हुई, पल्लू खींचने की कोशिश में और ज्यादा उलझ गई। विश्वनाथ ने धीमी भारी आवाज में कहा, विश्वनाथ, धीरे पर साफ लहजे में, इतनी सुबह सुबह चोरी क्यों कर रही हो? उसकी आवाज में मजाक नहीं, एक ठंडापन था, मगर फिर भी भीतर कहीं एक हल्की सी नरमी झलक रही थी। श्यामली के होंठ कांप गए। वो जल्दी से बोली, वो पल्लू दब गया था, मैं बस। विश्वनाथ ने अपनी हथेली धीरे से हटाई। पल्लू आजाद होते ही श्यामली ने उसे सीने पर कसकर लपेट लिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। विश्वनाथ अब भी उसे देख रहा था। उसने हल्के से भौहें चढ़ाई, फिर बहुत धीमे स्वर में, जैसे अपने आप से कह रहा हो, कहा, विश्वनाथ, अजीब है, सोते हुए भी कोई इतना खूबसूरत लग सकता है। ये शब्द सुनकर श्यामली की सांसें अटक गईं। वो उसकी आंखों में देखना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं कर पाई। उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। कमरे में कुछ पल तक खामोशी रही, बस दोनों की तेज सांसें और बाहर पंछियों की हल्की चहचहाहट गूंजती रही। श्यामली का दिल अब भी बेकाबू था। ये सच में कह रहे थे या फिर बस मेरी नज़र का धोखा था? वो धीरे से उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। पीछे लेटा विश्वनाथ पल भर तक छत को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था, सख्त और नर्म का संगम, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा हो कि अभी जो उसने महसूस किया वो सच था या बस एक पल की कमजोरी। रसोई में हल्की सी ठंडक थी। खिड़की से आती धूप बर्तनों पर चमक रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट हवा में घुली हुई थी। श्यामली धीरे धीरे भीतर आई। कमरे के बाहर जो बेचैनी और डर था, यहाँ आकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। गांव की हवेली होते हुए भी रसोई में गैस चूल्हा, मिक्सर और चमकते बर्तन मौजूद थे, लेकिन काम करने का ढंग वही पुराना। चूल्हे पर रखी मिट्टी की डिब्बियों में चाय पत्ती, शक्कर, अदरक और मसाले, पीतल की केतली चमचमाती खड़ी थी। श्यामली ने सांस भरते हुए केतली उठाई और पानी डालकर गैस पर चढ़ा दिया। उसके हाथ अपने आप काम कर रहे थे, मगर दिमाग अब भी रात और सुबह की घटना में अटका था। पानी में चाय पत्ती डालते डालते उसके मन में फिर वही सवाल गूंजा, क्या सच में विश्वनाथ ने कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, या फिर वो मेरी ही सुनने की भूल थी? वो चम्मच से चाय घुमाने लगी। उसकी आंखें चाय की भाप में खोई हुई थी। इतनी धीमी आवाज में कहा, मैं तो पक्के से सुन भी नहीं पाई। अगर सच में कहा तो क्या मतलब था उसका? क्या वो बस नींद में बड़बड़ा रहे थे, या सचमुच उन्होंने मुझे एक पल के लिए अलग नजरों से देखा? उसके गाल हल्के हल्के लाल पड़ गए, मगर अगले ही पल उसने खुद को टोका। नहीं नहीं शामली, तू बेवकूफ मत बन। ये वही आदमी है जिसने साफ कह दिया कि तू उसके लिए बोझ है। ऐसे इंसान से उम्मीद रखना ही गलत है। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे, मगर उसने उन्हें पलकों में ही रोक लिया। चाय की महक फैल रही थी। उसने अदरक कूटा, उसमें इलायची डाली और फिर दूध डाल दिया। भाप उठते ही रसोई में ताजगी फैल गई। शामली खुद से बोली, बस यही मेरा काम है, सबकी देखभाल, सबको खुश रखना। शायद यही एक तरीका है जिससे इस घर में मेरी जगह बनेगी। उसकी मासूमियत उसके हर हाव भाव में झलक रही थी, मगर मासूमियत के साथ समझदारी भी थी। अगर दिल से सबका ख्याल रखूंगी तो शायद एक दिन ये रिश्ते भी मुझे स्वीकार कर लेंगे। वो मुस्कुराने की कोशिश करती हुई चाय कपों में छानने लगी। पीतल की ट्रे में कप सजाई और सावधानी से उठाई। सबसे पहला प्याला उसने रतन देवी के लिए बनाया। धीरे धीरे वो उनके कमरे में पहुंची। कमरा बड़ा और खुला था। खिड़की से आती धूप बिस्तर पर बिखरी थी। रतन देवी तकिए से टिककर बैठी थी। अभी अभी नींद से उठी थी और हल्की सी अंगड़ाई ले रही थी। शामली धीरे से भीतर आई और प्याला उनके पास रख दिया। माची, आपकी चाय। रतन देवी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में हमेशा की तरह अपनापन था। उन्होंने प्याला हाथ में लिया, एक घूंट भरा और संतोष से सिर हिलाया। वाह शामली, तेरा हाथ सच में कमाल है। सुबह की पहली चाय बस तेरे ही हाथ की अच्छी लगती है। अब तो मुझे तेरे साथ की आदत सी पड़ गई है। उनके शब्द सुनते ही शामली की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो झिझकते हो बोली, आपकी पसंद आ जाए बस यही मेरी खुशी है माँ जी। रतन देवी ने प्यार से उसका सिर सहलाया। बिटिया, तूने बहुत जल्दी इस घर की रीत सीख ली है। तेरी देखभाल, तेरी कोशिश, सब मुझे दिखता है। औरत का असली गहना यही होता है। शामली के दिल में जैसे बोझ हल्का हुआ। उसे लगा कि कम से कम इस घर में कोई तो है जो उसकी मेहनत और भावनाएं समझ रहा है। उसने हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। रतन देवी ने फिर कहा, देख ये हवेली बड़ी है, इसमें कई लोग हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, लेकिन अगर तू ऐसे ही सबका ध्यान रखेगी तो एक दिन सब तुझसे जुड़ जाएंगे। समझदार है तू, मासूम भी है, यही तेरी ताकत है, इसे कभी छोड़ना मत। शामली ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में थोड़ी तसल्ली भी। चाय की भाप अब भी कमरे में महक रही थी और उसके साथ शामली की मासूमियत और उसकी सच्चाई भी जैसे हवा में घुल रही थी।